परम पूज्य श्री संत राम महाराज के पीठ के इस नवम पीठाधीश्वर श्री रामदास जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए ब्रह्म पुराण के संक्षिप्त कथा सत्र के उपलक्ष्य में आज की कथा में व्यासादि तीर्थों की महिमाएं, नारसिंह तीर्थ, पैशाच नाशन तीर्थ, नारसिंह तीर्थ एवं खड्ग तीर्थ, आत्रेय तीर्थ, भानु तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ एवं शुक्ल तीर्थ, विष्णु तीर्थ इत्यादि बहुत तीर्थों की जो महिमा बतलाई गई है, उन सब तीर्थों में आज समुद्र तीर्थ के विषय में कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूं। समुद्र तीर्थ वह है जहां गोदावरी नदी जाकर के समुद्र में मिलती है, जिनका दूसरा नाम गौतमी भी है। जैसा कि आप जानते हैं, गौतम ऋषि ने उन्हें ले आया, इसलिए उनका नाम गौतमी है। कहा कि समुद्र में जिस समय गौतमी नदी मिलने जा रही है, जो भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई, शिव के जटा से निकली, स्मरण मात्र से वो सभी प्रकार के पापों का संतापों का नाश करने वाली है, तो समुद्र मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जो भगवान विष्णु के साथ साथ चरण कमल से निकली, ऐसी गंगा का यदि हम स्वागत न करें तो एक बहुत बड़ा अपराध होता है। यदि हमारे घर कोई आने वाला अभ्यागत अतिथि आता हो तो हमें दरवाजे तक जाकर के उसका स्वागत करना चाहिए, यह शिष्टों की परंपरा है। नहीं जाने से आगे वाला व्यक्ति समझता है कि हमारे आने की उनकी जानकारी है, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए बड़े जब आने वाले हों तो उनकी आगवानी करनी चाहिए, क्योंकि समुद्र कह रहे हैं कि जो अपने घर आते हुए महापुरुष को लेने के लिए मोह पर स्वयं उपस्थित नहीं होता, उस पापी की रक्षा करने वाला दोनों लोक में कोई नहीं है। इसलिए अभ्यागत के स्वागत के लिए दरवाजे तक जाना चाहिए। जब हम जान रहे हैं कि वो आ रहे हैं तो अपने से बड़ों को लेने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोच करके समुद्र गंगा जी के मिलने के पहले हाथ जोड़ करके विनीत भाव से मूर्ति स्वरूप में खड़े हो गए और बोला, हे देवी, तुम्हारा यह जल जो आकाश, पाताल और मर्त्य लोक तीनों लोकों में फैला हुआ है, मुझे आकर के मिले, यह मैं कुछ नहीं कह सकता आपके विषय में, लेकिन मेरे भीतर तो रत्न है, लक्ष्मी जी मुझसे निकली है, मेरे अंदर पर्वत भी विलीन है कितने, और राक्षस लोग भी इसमें रहते हैं, और मेरे अंदर भयंकर जंतु भी रहते हैं, और मेरे जल में भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी जी भी शयन करती हैं। इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे स्वागत के लिए यहां आया हूं। जो अहंकार बस अपने से बड़ों का स्वागत नहीं करता है, उसके कीर्ति, यश और धन का सर्वस्व नाश होता है। तो आप कृपा ऐसा करना कि आप धीरे धीरे सात धाराओं में बह करके मेरे अंदर आना, क्योंकि तो आपके एक धारा का जो वेग होगा वो बहुत तेज होगा, मैं उसको सह नहीं पाऊंगा। कहां समुद्र गंभीर, लेकिन भगवती भागीरथी के वह वेग को सहन करने में अपने को असमर्थ बतला रहे, कह रहे हैं कि आप सात धाराओं में बन करके आए तब मैं सहन कर पाऊंगा। गंगा ने कहा, भाई एक शर्त है कि आप यदि सप्तर्षियों को लेकर के आओ तो मैं सात धाराओं में विभक्त हो जाऊंगी। तो समुद्र ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। समुद्र ने साते साथ ऋषियों की प्रार्थना की कि आप साते साते यहां पहुंचो। तो सप्तर्षियों के आने पर गंगा की वहां सात धाराएं हो गई और वो सात धाराएं जब हुई तो गंगा जी का नाम वहां सप्त गंगा पड़ गया। वहां जहां सप्त धाराएं हैं वो सप्त गंगा में ऋषियों के आने से वहां बहुत बड़ा एक यज्ञ हुआ। जहां सात सात ऋषि जुटे वहां यज्ञ न हो, ऋषति गच्छति समाधौ इति ऋषि, जो समाधि दशा में बैठे बैठे ही सारे भूमंडल में परिभ्रमण कर ले, सबको देख ले, सबका हाल चाल ले ले, शरीर यहाँ रहे लेकिन समाधि स्थिति में सब जगह जाए पहुंचे, उसको हम ऋषि कहते हैं। ऋषयो मंत्र द्रष्टा रहा, एक एक मंत्रों के दर्शन करने वाले ऋषि हुए। तो इसलिए वो जो तीर्थ हुआ सप्त गंगा तीर्थ हुआ और ऋषि सत्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि ऋषि लोग वहां तपस्या करने लगे। जहां गंगा और समुद्र का मिलन हो फिर क्या पूछना है। वहीं पर भीमेश्वर शिव जी विराजमान है, भीम तीर्थ भी है, जो गंगा जी की सात धाराएं विभक्त हुई उन सातों धाराओं के ऋषियों के नाम पर वहां नाम पड़े। अच्छा हाँ, सप्तर्षि धाम वहां भी, जी जी, सप्त सरोवर है, हाँ सप्त सरोवर है। अच्छा अच्छा, तो उसमें बतलाया कि वाशिष्ठी, वशिष्ठ जी के चलते एक धारा का नाम वाशिष्ठी पड़ा, दूसरे धारा का नाम विश्वामित्र के नाम पर विश्वामित्री पड़ा, तीसरे का नाम वामदेवी पड़ा वामदेव ऋषि के नाम पर, फिर गौतम ऋषि के नाम पे गौतमी धारा नाम पड़ा, फिर भरद्वाज के नाम पे भारद्वाजी, अत्रि मुनि से आत्रेयी और जमदग्नि से जामदग्नि धारा का नाम पड़ा। अब जहां भी सत्कार्य होते हैं ना, उसके कुछ न कुछ द्वेष कारक लोग होते हैं जिनको देख करके वो सहा नहीं जाता कि अच्छा कार्य हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो वो विघ्न डालने के लिए वहां उपस्थित हो जाते हैं। यह शुरू से रहा है, वह ऋषि युग में रहा, सतयुग से लेकर के कलयुग तक ऐसा होता रहा है। तो इस स्थिति में कलयुग में तो कुछ अधिक है, क्योंकि जो युग है इस युग में धर्म एक ही पद पर स्थित है, इसलिए तीन पद पर, तीन तरह से अधर्म का ही राज है, एक ही पैर पर धर्म स्थित है। ऋषभ जो है धर्म स्वरूप, उसका चार पैर है, चार पैर में से एक ही पैर कलयुग में है जिससे वो स्थित है, बाकी तीन पैर उसके नहीं है। सतयुग में चार पैर होता था, त्रेता में तीन पैर हुआ तो राम जैसे राजा की जरूरत पड़ी, द्वापर में दो ही पैर बचा तो श्री कृष्ण का अवतार होता है, और कलयुग में जो है एक ही पैर पर धर्म रहता है। तो ऋषियों ने जब यज्ञ करना प्रारंभ किया तो वहां उनके प्रबल शत्रु विश्वरूप महाराज उपस्थित हो गए। और उन्होंने बहुत ब्रह्मचर्य पालन किया था, तपस्या किया था। उन्होंने विनय पूर्वक पूछा, हे मुनिवरो, यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से भी मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो, जिससे देवता परास्त न कर सके, ऐसा आप हमको कोई अनुष्ठान बतलावें। देवताओं को परास्त करने के लिए ऋषियों से वो परामर्श लेने पहुंचे। ऋषियों के पास सब लोग आते हैं, देवता भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, क्योंकि उनको सबका हित करना है, वो ऋषि हैं। हाँ राक्षस भी आते हैं, देवता भी आते हैं वो किसी को ना नहीं कहते हैं, जो आएंगे उनके लिए उपाय बतला देंगे, वो उनकी निष्ठा के अनुसार उसमें सिद्धि होती है। तब परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने कहा कि कर्म से नाना प्रकार के फल होते हैं, कर्म करो तो फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तीन प्रकार से, तीन कारण है, उसमें कर्म पहला कारण है, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। फिर दूसरा जो है उपादान, बीज और विद्वानों ने कर्म को कर्म नहीं माना है। उपादान कारण मतलब जिस सामग्री को लेकर के कार्य होता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे ये हमारा जब्बा बना हुआ है, कुर्ता, ये धागों से बना हुआ है, यदि धागा नहीं होता तो यह कपड़ा नहीं बनता, यह क्या हुआ, उपादान कारण हो गया। लेकिन कर्म क्या है कि बुनकरों ने इस कपड़े को बुना, तो बुनने का कर्म है, यदि धागा होता और बुनने रूपी कर्म नहीं होता तो यह कपड़ा नहीं बनता, तो वो कर्म हुआ, और धागा जो है वो उपादान कारण हुआ। जैसे यह भवन है, ईंटा पत्थर नहीं लगा होता, इसमें सीमेंट नहीं लगा होता तो नहीं बनता, तो उपादान जिसको लेकर के कार्य बने उसको उस कारण को हम उपादान कारण कहते हैं। और उसमें बीज, बीज रूप में उसके विचार हो सकते हैं, विचार आए और आप कर्म न करो, कारण भी विद्यमान हो लेकिन कारण को लेकर के कार्य न बने। तो मुख्यतया तीन लोगों से कार्य होता है, बीज को लेकर के, उपादान कारण को लेकर के और कर्म को लेकर के, यह तीन जब जुटते हैं तो कार्य होता है, फल की सिद्धि होती है। इसलिए आपको कर्म करने का अधिकार है, आप कर्म करो। जहां बहुत से कारण उपस्थित हो वहां कर्म ही प्रधान कारण सिद्ध होता है, क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और न करने से नहीं होती है, अतः फल की सिद्धि कर्म के अधीन है। कर्म भी दो प्रकार के, एक क्रियमाण जिसको हम प्रारंभ करते हैं और एक कृत जो हमने कर दिया है, तो जो कर दिया है उसका फल हम कालांतर में पाएंगे, अक्रियमाण अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका तुरंत फल नहीं मिलेगा। तो जो क्रियमाण कर्म है वह साधन बतलाया गया है, लेकिन कर्म के साथ हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। यदि भावना नहीं होगा तो कर्म की सिद्धि नहीं होगी। जैसा हम भाव रखेंगे उसी तरह के कर्म के साथ सिद्धि प्राप्त होती है। यदि विधि भावना के बिना विधि पूर्वक जो अनुष्ठान करता है उसे अन्य प्रकार का ही फल मिलता है। यदि उसमें भाव न हो, क्योंकि भावम इच्छन्ति देवताः, हमने कर्म तो कर दिया, फूल तो चढ़ा दिया, लेकिन फूल चढ़ाने के लिए ऐसे फेंक करके भी चढ़ा दिया और फूल को ऐसे भगवान के गले में पहना करके प्रणाम किया हृदय से, वो भी एक भाव है। तो भाव के द्वारा सिद्धि मिलती है। तप, जप, व्रत, दान, यज्ञ सभी भाव से ही फल देते हैं, और उसमें भी सात्विक, राजस और तामस, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, और वह भाव के अनुसार ही तीनों सिद्धि देते हैं। इसलिए कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चारों पुरुषार्थ है उसमें कर्म ही कारण है, बिना कर्म किए किसी को कुछ मिलता नहीं है, यह सामान्य सिद्धांत है। और यदि कर्म निष्काम भाव से हो तो वह मुक्ति प्रदान करता है, उसमें बंधन नहीं होता है। और सकाम भाव से हो तो बंधन होता है। हमें किसी फल की प्राप्ति करनी है, हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर जाने के क्रम में हम तब तक वहां जाएंगे जब तक हमें वो मिलेगा नहीं फल। यदि फल मिल गया तो हम फिर मंदिर जाना बंद कर देते हैं। लेकिन जिसे कोई फल की आकांक्षा नहीं है, वह मंदिर जाता है तो उसके हृदय में रोज प्रीति बढ़ेगी, आह्लादकता आएगी और वह मंदिर का ही होकर के रह जाएगा, ऐसा लगेगा कभी समय आएगा। तो ये जो निष्काम कर्म है वह बंधन नहीं देते हैं, वो प्रसन्नता देते हैं, वो मुक्ति देते हैं। वो कहीं जाएगा तो नहीं भाई तुम जाओ, तुम तो रोज आने वाले हो, कोई बात नहीं एक दिन जाओ। लेकिन जो पैसे पर रखा जाएगा फल की इच्छा से, ये वेतन भोगी है तो उससे कर्म कर बंधन स्वरूप उसको प्राप्त होता है। तो यही कर्म बंधन की स्थिति है दृष्टांत के रूप में। तो कर्म फल देता है, आप कर्म करो, ऐसा करके विश्व रूप जी को बतलाया। जब विश्व रूप ने सुना विश्वामित्र का वचन तो वो कर्म करने के लिए उद्यत हो गए। कारण क्या था कि उनका कर्म दूसरे को मारने के लिए ही करना था, क्योंकि जो दूसरे के हिंसा के लिए कर्म करे वह कर्म कभी सात्विक तो हो ही नहीं सकता। जिसमें दूसरे का दूसरे से द्वेष हो, दूसरे की हिंसा हो, वह कर्म कभी सात्विक नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनमें बड़ा क्रोध था देवताओं के प्रति, इसलिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा कुंड जैसा, और भयानक कुंड में अग्निदेव को प्रज्वलित किया, और प्रज्वलित करके उसी में भगवान भीम रूप शिव का आवाहन किया।